आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 5। ओम नमः सीतेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहूरं, लक्ष्मीनिवासनिलयं, विलीनविलयं, निधाय रदिवीरं, आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य रचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है और इस पर सहजानंद जी महाराज जो क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी के प्रवचन हम पढ़ रहे हैं।
हेलो,
हाँ, अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 20 पर। शोभाबेन, क्या प्रश्न था आपका? कुछ प्रश्न है क्या आपका शोभाबेन? ठीक है, बाद में। हाँ, अभी 20 नंबर के पेज पर नीचे का पैराग्राफ, वहां से हम पढ़ेंगे। 20 सद्वचन व्यवहार की आवश्यकता। भैया, अज्ञानी मनुष्य कुछ नहीं विचारते और जो मन में आया सो बात कह डालते हैं। किसी को चुभने वाली बात कह देने से उसे कितना कष्ट पहुंचता है और यह कहने वाला भी कितना संकलेश करता है। क्योंकि बिना संकलेश के वो कठोर शब्द कैसे कहेगा? ये उसके खुद के भी संकलेश परिणाम होते हैं, तब उसके द्वारा ऐसे कटु वचन निकलते। अपने जीवन में एक ही गुण लाए कि हम बोल संभाल कर ही बोलेंगे। वो आता है ना एक सुविचार कि शस्त्र से भी शब्द जो है, शस्त्रापेक्षा शब्द जपून वापरावे। जपून वापरे उसका यू
संभाल
के उसका वापरना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। क्योंकि शस्त्र द्वारा जो जख्म होती है वो तो ठीक भी हो जाती है, परंतु शब्द से जो जख्म होती है वो तो सालों तक चलता है, उसको याद करते रहता है। यह कहते हैं कि अपने जीवन में एक ही गुण लाए कि हम बोल संभाल कर ही बोलेंगे, यानी सोच संभाल कर बोलूं। किसी के द्वारा यदि कोई बिगाड़ भी पहुंचता हो तो मैं अपने मन को महसूस लूंगा, क्यों कषाय में आकर दुर्वचन बोलूं? दुर्वचन बोल देने से तो लड़ाई ही बढ़ती है और उसकी ओर से भी प्रायः कष्ट की ही संभावना है। साथ ही दुर्वचन बोल चुकने पर हम क्षमा मांगे और वह क्षमा कर दे तो यह अपने हाथ की बात न रहेगी। क्योंकि भले ही उसने बाद में क्षमा मांग भी ली तो सामने वाले ने क्षमा भी तो कर लेनी चाहिए, यह अपने हाथ की बात नहीं रहती। अभी किसी समय अपने दिल को महसूस कर रह जाए तो कुछ मिनट बाद अपने दिल को समझाया जा सकता है। यानी भले उस समय किसी ने अपना कुछ बुरा किया है, कुछ काम बिगाड़ दिया है, तो हम अपने ही मन को समझा सकते हैं। कुछ देर के लिए तकलीफ होगी अपने को, दिल महसूसना है, थोड़ा शांति रखना, पर दूसरे को वचन लगने पर हम विवश हो जाएंगे। जैसे धनुष से निकले हुए बाण को कितनी ही मिन्नत करो कि ये बाण तू वापिस हो जा, तू गलती से छूट गया है, वापिस हो जा, तो वह वापिस नहीं आ सकता। हमने तो केवल जख्म की अपेक्षा बात की, पर यहाँ तो छूटा हुआ बांध तो हम वापिस नहीं ला सकते। ऐसे ही क्रूर मुख रूपी धनुष से, ये मुख जो शब्द निकलता है मुख से, तो उसको क्रूर कह दिया। क्रूर मुख रूपी धनुष से निकले हुए वचनों का कितना ही पछतावा करो पर वे वापिस नहीं हो सकते हैं। इस कारण वचन बोलने से पहले हमें अपनी बड़ी संभाल रखना है। दुर्वचनों से किसी का भी हित नहीं है, निंदा भरे वचनों से यह वक्ता दूर रहता है। वक्ता के गुणों की बात चल रही है यहाँ पर, ये तो वक्ता के लिए तो है ही है, लौकिक में भी हर एक जन तो इस तरह से सोच संभल कर अगर वचन बोलता है तो वो उसी के लिए अच्छा रहेगा। अब पेज नंबर 21, 21 पृष्ठ पर आए हम, गुणनिधित्व। देखो हमने श्लोक पढ़ा था ना, उसमें क्या क्या देखा था हमने, प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, ये मिलकर 2 नंबर हुआ था। प्रव्यक्त लोक स्थिति 3 हुआ था। प्रास्त आशा, यानी जिसकी आशा कुछ नहीं उसके, प्रतिभा पर 5। प्रशम वाने ने शांत स्वभाव, प्रागेव दृष्टोत्तर, यानी पहले से उसने उत्तर उसके पता है सामने वाले के मन में क्या प्रश्न उठ सकते हैं। प्राय प्रश्न सह, प्राय अलग किया क्या, प्रश्न को सहन करने वाला ऐसा उसका अर्थ किया था। प्रभु, प्रभुता वाला। पर मनोहारी और परानिंद, निंदा से दूर। अब गुणनिधि की बात करें, गुणनिधित्व कितने, 13 बताए थे ना, ये परानिंद 11 हो गया, गुणनिधि 12 हो जाएगा और प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर 13 हो जाएगा। अब गुणनिधित्व की बात कर रहे हैं, गुणनिधि। हाँ, ये तो धर्म कथा कहने वाला कैसा होना चाहिए उसकी बात चल रही है। भूया धर्म कथा, धर्म कथा का करने वाला यानी वक्ता, धर्म कथा का करने वाला उपदेशक कैसा होना चाहिए, इस संबंध में यह सब वर्णन चल रहा है। पहले तो उसके सारे विशेषण बताए और चौथी लाइन में बताए किसकी बात चल रही है, तो धर्म कथा बताने वाले की। वक्ता गुणनिधि होना चाहिए, निधि यानी उसका समूह, गुणों का समूह, जिसमें प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये किसके गुण है कुछ याद है वीरेश भाई, ये 4। हाँ, समय दृष्टि के, समय दृष्टि के ये बाह्य लक्षण बताए जाते हैं, या तो 4 में बता देते हैं या उसके 8 भी भेद करके बताते हैं। संवेग में ही निर्वेद आ भी जाता है, फिर उसमें वात्सल्य और प्रभावना वगैरह भी उसमें आते हैं, ऐसे 8 भी उसके, और एक कौन सा है उसमें भक्ति आता है। तो कहते हैं प्रशम संवेग, इस संवेग स के ऊपर बिंदी चाहिए, वह को मो नहीं लगता है, संवेग। अनुकंपा आस्तिक आदि गुण मौजूद हो, प्रतिकूल घटनाएं आने पर भी शांत रह सके, क्योंकि सभा में तो कोई कुछ आक्षेप भी ले सकता है, उल्टे सुलटे प्रश्न भी पूछता है, अन्य भी कितनी बातें होती है। दूसरा अपराध करे तो उसको क्षमा कर सके, घमंड रंच मात्र भी न हो, माया लोभ से भी ग्रस्त न हुआ हो, ऐसे अनेक गुणों का निधि वक्ता होना चाहिए। ये 4 तो गुण बताए बताए, उसके साथ साथ और भी बता दिए उन्होंने। अहंकार किस बात का, जो कुछ विद्या पाई है वह यह विद्या आत्मा के उत्कृष्ट ज्ञान प्रकाश के सामने कुछ चीज नहीं है। क्या कहते हैं, विद्या ने जो सूक्ष्म ज्ञान, जो शास्त्र ज्ञान है, अन्य जो बातें है वो विशेष जानता है अन्य से, तो कहते आत्मज्ञान के सामने तो कुछ नहीं है। और उसके आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है तो उसने तो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त किया है, तो इस बाह्य जो क्षोभ की समय दृष्टि हो तो उसके तो कुछ मायना नहीं रखते, कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देता उसको, तो उसको अहंकार भी नहीं होगा। तो कहते अहंकार किस बात का, ये जो बाह्य विद्या है शास्त्र ज्ञान जो है आत्मज्ञान के सामने वो कुछ नहीं है, ये कहना चाहते। केवल ज्ञान जिससे तीन लोक तीन काल का समस्त परिज्ञान होता है, परिज्ञान यानी परिपूर्ण ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान के समक्ष हम आपने वो बड़े विद्वानों ने भी जो विद्या पाई है वह न कुछ जैसी चीज है, न कुछ जैसी चीज है, न कुछ नहीं है उसके सामने। छद्मस्थों के विद्या की अपूर्णता, यानी छद्मस्थों की जो विद्या है कितना भी वो पढ़े लिखे 12 अंक के ज्ञानी भी हो जाए तो केवल ज्ञान के सामने वो कुछ नहीं है। एक कोई नया छात्र बीए पास करके खुशी में समुद्र की सैर करने चला, समुद्र के किनारे पहुंचकर नाविक से बोला, ए नाविक हमें समुद्र की सैर करा दे। नाविक बोला, भाई 1 रुपया लगेगा। हाँ हाँ 1 रुपया ले लो। बैठ गया वह नाव में। समुद्र में थोड़ी दूर जब नाव निकल गई तो वह छात्र बोला कि तू कुछ पढ़ा लिखा है? तो नाविक बोला, ना भाई हम कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है। तो तू ABCD भी नहीं जानता? ना भाई। तो तू OAEE भी हिंदी की नहीं जानता? ना भाई। तेरा बाप कुछ पढ़ना जानता है? ना भाई। उसने नालायक बेवकूफ आदि गालियां दी और कहा, ऐसे ही लोगों ने तो इस भारत देश को बर्बाद कर रखा है। वह बेचारा नाविक कुछ पढ़ा लिखा तो था नहीं, सो सब सुनता गया। समुद्र में जब 3-4 फरलांग नाव निकल गई तो एक लहर उठी कि नाव डगमगाने लगी। तो नाविक बोला कि नाव अब नहीं बच सकती, हम तो तैर कर पार कर जाएंगे। तो बीए पास बालक बोला, मुझे किसी तरह से पार करा दो ताकि मेरी जान बच जाए। तो नाविक बोला कि क्या तू तैरना भी नहीं जानता? बोला, हाँ नहीं जानते। तेरा बाप तैरना जानता है? बाप भी तैरना नहीं जानता है। तो नालायक बेवकूफ आदि वही गालियां उसने भी दी जो बीए पास बालक ने दी थी और कहा कि ऐसे ही लोगों ने तो भारत देश को बर्बाद कर रखा है। अरे कौन सी विद्या ऐसी है जो परिपूर्ण कही जा सकती है? कोई भी तो यहाँ ऐसी विद्या नहीं है। कौन सा ज्ञान हम आपने पाया है जिस पर अभिमान किया जाए? यथार्थ वक्ता वही होता है जो क्रोध मान माया लोभ आदि से परे रहे। अकेले लोभ ने सभी क्रोध मान माया सभी से परे रहे, अर्थात वक्ता गुणों का निधान होना चाहिए। निधान यानी वो खजाना, उसका समूह, उसका गुणहीन पुरुष में नायकपने की शोभा नहीं रहती। नायकपने ने नेतागिरी, नेता वो मुखिया जो बन जाए तो वो शोभा नहीं रहती। स्पष्ट मिष्टाक्षरता, अंतिम बताया था ना प्रस्पष्ट, क्या लिखा था वहां पर, प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर। प्रस्पष्ट ने स्पष्ट, मिष्ट अक्षर, मिष्ट ने मीठे। अब वक्ता का अंतिम लक्षण कहा जा रहा है, वक्ता स्पष्ट और मिष्ट अक्षरों का बोलने वाला हो। स्पष्ट यानी शुद्ध उच्चार हो, कि स्पष्ट हो, कोई अस्पष्ट बोल दिया या कोई संदेह वाली चीज बोल गई तो उससे कुछ अर्थ नहीं भाषित हो जाएगा। जो अर्ध चौथाई वचनों को खा खा कर बोले, क्या कहते हैं, यानी कोई बोलते बोलते यानी पूरा पूरे शब्द नहीं बोलता, छूट जाते हैं, जिसको कहते उसने खा लिए। जो अर्ध चौथाई वचनों को खा खा कर बोले, कुछ समझ में आए कुछ न आए, या ऐसा विचित्र बोले कि श्रोताजन कुछ ग्रहण ही न कर सके, ऐसी बात एक योग्य वक्ता में नहीं होती है। वक्ता स्पष्ट और मिष्ट अक्षरों का बोलने वाला होना चाहिए। यूं तो शास्त्र प्रवचन में श्रोतागणों को अधिक से अधिक गाली दे देने का अवसर रहता है, क्या कहते हैं, तुम मोही हो, मूर्ख हो, अविवेकी हो, अपने आत्मा को नहीं जानते हो, संसार में रूलते हो, बड़े कषायवान हो, इस तरह तो नरक में जाओगे, दसों बातें बोली जा सकती है। आखिर बातें ठीक ही तो है, पर ऐसी बात बोलने का क्या प्रयोजन है और श्रोतागण उससे क्या लाभ उठाएंगे। अरे वही बात संबोध करके भी बोली जा सकती है। जो अनिष्ट अक्षरों में उपदेश होता है उसका प्रभाव श्रोताजनों पर नहीं होता है। हितमित प्रिय वचन ही श्रोताओं पर प्रभावक हो सकते हैं। इस कारण मिष्ट अक्षरों का बोलने वाला वक्ता हो, मिष्ट नहीं मिष्ट चाहिए, मिष्ट मिष्ट ने मीठे शब्दों में बोलना, यानी वो तो जिसको कहें ना मिष्ट अक्षर बोलना, कुछ मायाचारी नहीं है वहां पर, किसी को चापलूसी नहीं करनी है, ना ही उनको कुछ करना है, परंतु वही बात सीधे साधे शब्दों में भी कह सकते हैं, है ना। वक्ताओं की श्रेष्ठता, ये सब गुण बता दिए उन्होंने, 13 बताए अभी तक। ऐसे उक्त 13 गुणों करके संयुक्त वक्ता हुआ करता है। ऐसा गुण उत्कृष्ट रूप में जहां मिल सके वह तो उत्कृष्ट वक्ता है। प्रभु अरहंत परमात्मा, सकल परमात्मा, जिसकी दिव्य ध्वनि खिरती है और जिसके उपदेश की परंपरा चलती है, उन भगवान सर्वज्ञ देव को वक्ता नहीं कहा। वह तो हम आप सबके ईश्वर है, वह तो हम सबके शरण है और आधार है। वक्ता का पद गणधर देव से शुरू होता है। अच्छा, जब हम कहते अस्य मूल कर्तारा गण, कर्तारा उसको कर्ता कह दिया, वाणी के मूल कर्तारा गणधर देवा, ये सारी सर्वज्ञ देवा। शास्त्र के शुरुआत में वो पद बोलने की प्रघात है ना, अस्य ग्रंथ मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा गणधर देवा, फिर उनके आचार्य परंपरा, वो लंबा चौड़ा बोलते हैं, आपको मालूम है कि नहीं उन्होंने, अरे कभी सुना नहीं, ओहो पहले पहले बहुत बार बोला कि ऐसी पद्धति थी पहले, यानी शास्त्र जब शुरुआत करते थे, अभी जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहना शुरुआत करना है तो उसका मंगलाचरण किया, फिर कहेंगे अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर यानी उनके पश्चात इस ग्रंथ करता कौन है, तो गणधर, क्योंकि उनसे ये बात चली आई, फिर वो आचार्य के परंपरा से, अभी फिर जाकर वो कहेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसने लिखा, तो पंडित रमन जी, और लास्ट में कहते तो श्रोतारा सावधान है गुणवंतु, हे श्रोताओ आप सावधान होकर इसको सुनो। पहले शास्त्र में ये पूरा ये वाक्य बोलने की पद्धति थी, कहीं कहीं शास्त्र के पहले लिखी हुई भी मिलती है, अभी आजकल में नहीं मिल रही है, परंतु मैंने तो ये वाक्य सुने भी है बचपन में से। गणधर देव जो गण को धारण करे, गण यानी मुनियों का समूह, उसको गण कहेंगे, गण के अधिपति हो, गणाधिपति कहेंगे, गणपति कहेंगे, ये गणपति जो लौकिक में चल रहा है वो नहीं, ये गणधर को ही गणपति कहते हैं, एक्चुअली अरहंत भगवान को भी कहते हैं, तुम गणधर गणपति, गणत ही नाही पार, ऐसा कुछ है ना, तुम गुण गणमणि गणपति गणत ही नावे पार, ऐसा कुछ उसका वो श्लोक है, यानी आपके गुणों के पार नहीं पाते हम कितना भी वर्णन करें तो। अरिहंत भगवान को भी कह दिया उन्होंने, तो गण ईश हो, ऐसे गणेश, गण के ईश उसको गणेश कहा, गण के अधिपति, गण के प्रमुख उसको भी गणपति कहे, उत्कृष्ट वक्ता होते हैं, यानी ये गणधर के ही नाम है, गणेश कहो या गणपति कहो। और विद्या के अधिपतित्व के प्रसंग में प्रथम गणेश का स्मरण होता है, ये गणेशाय नमः जो कहते हैं वो गणेश, गण के ईश जो गणधर, उनको प्रथम स्मरण किया जाता है। यही तो है ना, अभी उस गणेश को कोई अन्य रूप दे दिया है और उसी को मानने लगे हैं। अभी इसी क्या बात है, शादियों में भी वो गणे वगैरह करते, उसमें क्या होता है, वो तब तो शास्त्र की तो पूजा होती है वहां पर, पंच परमेश्वरी यंत्र भी रखते, पांच चीजें और जिन यानी जिनवाने रख के उसके सामने करते हैं। देखो यहाँ क्या कहते हैं, और विद्या के अधिपतित्व के प्रसंग में प्रथम गणेश का स्मरण होता है। हम कहते हैं श्री गणेशा किया उसका, ऐसा भी कहने में आता है। और पहले में पहले जब पाटी पर लिखना चालू करते थे हाथ, तो क्या वैसे तो वहां तो ओम नमः सिद्धेभ्यः कहने की बात, ओम नमः सिद्धेभ्यः, और मराठी में उसका अपभ्रंश होता होते होते ओ नामासीदम, ओम नमः सिद्धम, ओ नामासीदम, इतना हो गया है। अब ऐसा वो शब्द भी आता है, इसका ओनामा कर दिया, आपने सुना हो? वो बात नहीं, ये ओनामा करना यानी किसी कार्य का शुरुआत करना, उसको ओनामा करना कहते हैं। ओनामा है ओम नमः सिद्धे या ओम नमः सिद्धम, ये संस्कृत का वाक्य था, तो कहते ओनामा सिद्धम, इसे मराठी में कहने की पद्धति है। इसका अपभ्रंश होते होते इतना रह गया उसका। देखो गणेश अर्थात साधु संत जनों के ईश स्वामी गणधर देव, ये मनःपरे ज्ञान के धारी है, अवधि ज्ञान से बहुत कुछ दूर की और बहुत कुछ भूत और भविष्य की बातें जानते हैं। यानी अवधि ज्ञान से यानी अवधि ज्ञान के द्वारा, मनःपरे ज्ञान के तो धारी है ही है, अवधि ज्ञान के भी धारी है, तो बहुत कुछ दूर की और बहुत कुछ भूत और भविष्य की बातें जानते हैं। अवधि यानी मर्यादा सहित जानना, तो ये अवधि ज्ञानी जो होते हैं तो भूतकाल और भविष्यकाल की कितनी आगे तक की बातें, हाँ दोनों की अपेक्षा जानते हैं। और दूसरे के मन को विचारों को स्पष्ट जानते हैं, मन परिज्ञानी, इतना विशिष्ट ज्ञान गणधर देव के होता है। तो उत्कृष्ट वक्ता हुए गणधर, उसके बाद आचार्य, और उसके बाद साधु, उसके बाद उत्कृष्ट श्रावक, मध्यम श्रावक और सम्यक दृष्टि जन, ये सभी वक्ता हो सकते हैं। अभी उत्कृष्ट श्रावक कहने से बारहवें गुणस्थान में तो कोई नहीं कहेगा ना, ये छठे पांचवे और चौथे से तीन भेद कर सकते हैं हम, क्योंकि वक्तापना तो छठे गुणस्थान में संभव है, बाकी ऊपर तो ध्यान के गुणस्थान है। हाँ वक्ता वाला वो जो बोलने वाले के छठा सातवा भी चलता रहेगा, उसकी बात नहीं है। ये गुण सभी उत्कृष्ट रूप से पाए जाए यह असंभव है, किंतु इन गुणों की किसी न किसी रूप में झलक रहे तो वह वक्ता यथार्थ वक्ता हो सकता है। योग्य वक्ता के सान्निध्य में श्रोताओं पर श्रोताओं की योग्यता का प्रभाव, यो यह आत्मानुशासन ग्रंथ के वक्तव्य से पहले भूमिका रूप में वक्ता के गुण बताए गए हैं। इन गुणों से युक्त कोई वक्ता श्रोताजनों को मिल जाए तो उन श्रोताओं को उस वक्ता में विशेष श्रद्धान होता है और तब श्रोताजन विशेष लाभ लेते हैं। एक बात और जानने की यह है कि जितना भी असर पड़ता है वह श्रोताओं के अपने विशुद्ध आशय का असर पड़ता है। वक्ता गुणी भी हो लेकिन जब तक श्रोता के हृदय में यह बात नहीं समाई कि यह वक्ता गुणी है, सदाचारी है, समर्थ है और स्वयं आत्मकल्याण की प्रगति कर रहा है, इतनी बात श्रोता के मन में न समाई हो तो श्रोता पर कोई असर नहीं पड़ सकता। हो सकता है ना श्रोता अपने मन में कुछ अन्य अभिप्राय लेकर वहां गया हो, ये समाज का नुकसान करने कर चल रहे हैं, ये स्वच्छंद का पोषण करने वाले हैं। जैसे कांजी स्वामी पर भी आरोप चलते थे कि नहीं चलते, ये दिगंबर का धर्म डुबाने आए हैं, ऐसे अभिप्राय करने वाले श्रोताओं का वो लाभ नहीं मिलता था। हाँ, जब सुनते थे कुछ समझ में आ गई बात, तो बाद में वो भी चेंज हो गए। तो उस असर का कारण श्रोताजनों की स्वयं की योग्यता है। ये तो हम देखें, कोई भी चीज समझ में आती है, ज्ञान में आती है, तो उस अपनी योग्यता के बिना नहीं आ सकती। तो कहते हैं वो असर का कारण है श्रोताजनों की स्वयं की योग्यता। ऊपर बताए ना, योग्य वक्ता के सानिध्य में श्रोताओं पर असर होता है, प्रभाव होता है, परंतु उसमें वो श्रोता की अपनी योग्यता काम कर रही है। यहाँ वक्ता की तरफ से बताना है तो वक्ता के गुण बताएंगे, पर श्रोता ने जो ग्रहण किया है वो अपनी योग्यता से ग्रहण किया। तो श्रोताजनों की स्वयं की योग्यता है, यह सब योग्यता गुणों वाले वक्ता के सामने रहने से प्रकट होती है। यो वक्ता के ये 13 गुण बताए गए हैं, इसके बाद भी कुछ और योग्यता वक्ता की बताई जाएगी, किसे शास्त्र कहने का अधिकार है यह उसमें स्पष्ट झलकेगा। श्रुतम अविकलम शुद्धा वृत्ति पर प्रतिबोधने परिणतिरुद्योगो मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ बुधनुतिरनुसत्सेको लोकज्ञता मृदुता स्पृहा यतिपति गुणा यस्मिन्नन्ये च सोस्तु गुरु सताम। उपदेष्टा के श्रुत की अविकलता, श्रुतम अविकलम, पूर्व छंद में वक्ता के गुण बताए गए थे कि वक्ता में और क्या गुण होने चाहिए, अब इस श्लोक में यह बताया जा रहा है उसी उपसंहार रूप में कि कैसा वक्ता शास्त्र कहने का अधिकारी होता है। विकल लेने वो तो टूटा फूटा, अविकल लेने पूर्ण रूप से उसका अविकल शुद्ध होने, आधा अधूरा ज्ञान ना हो, पूरा हो। विकलांग किसको कहते हैं? अंग जिसके विकल हो, और आप कैसे हो? अविकल हो। समझ में आई ना? ये शुद्ध भी वो अच्छी तरह से पूरा जानता हो, हाँ, उसके विषय की जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। उपदेष्टा है ना, उपदेश देने वाला वक्ता, उपदेष्टा करते थे वक्ता। उपसंहार करना नहीं, समेटना, तात्पर्य करना भी। जो हमने देखो, पहले कादंबरी या नॉवेल लिखी जाती थी तो शुरुआत में उपोद्धाते ने इंट्रोडक्शन रूप से कुछ बताते और अंत में जाके उपसंहार करते थे। उपसंहार करना नहीं, अभी समेटना, पूरा विषय को समेट लेना, उसको उपसंहार करते। यानी पहले तो गुण बताए, अभी उसी को समेटते हुए कुछ और बातें बता देंगे, या तात्पर्य रूप से भी कह सकते हैं, उपसंहार करना, तात्पर्य बता देना, ये इसको भी कहते हैं। उपदेश दाता गुरु इतने गुण संपन्न हो जिनका अविकल शुद्ध हो, शास्त्र का रहस्य और अर्थ स्पष्ट झलकता हो, झलकता है ना, उनके ज्ञान में भी है और उनकी वाणी में भी झलकना चाहिए। किसी भी एक विद्या में पूर्ण निपुणता न हो तो उसे अधिकारी नहीं कहा जा सकता। यानी हम स्पेशलिस्ट किसको कहेंगे? उस विषय में पूर्ण अधिकारी है ना, वो उसको सब पूरा जानता है। डॉक्टर के पास जाना है, ऑपरेशन करवा लेना है, तो पहले उसकी क्या डिग्री है, क्या किया उसने, उसे सब बराबर देखे जाते हैं ना, अन्य जीवों ने जो कोई ऑपरेशन किया है अन्य लोगों ने, हाँ, तो उसकी क्या रिकॉर्ड है, क्या उनकी, ये सब बराबर देखता है। तो यहाँ पर भी उस विषय में वो निपुण होना चाहिए, अपने विषय में। जैसे गाना किसे नहीं आता, सभी अपनी खटिया पर पड़े पड़े कुछ ना कुछ गुनगुनाए करते हैं। आप कहते हैं ना बाथरूम सिंगर, हाँ, जब अपने आप गाना गाते हैं तो पता नहीं पड़ता कि हम बेसुरा गा रहे हैं। अपना गीत कहने का ढंग बहुत क्रमिक मालूम होता है, पर गायन सुनने वाले दूसरे लोग कहो उसका गायन सुनकर बेचैन हो रहे हो। जब सुरीला गाना नहीं होता है, राग भी अटपट होती है, तो सुनने वाले लोगों के चित्त में कुछ चोट लगती है। कैसा यह बेसुरीला बेढंगा गा रहा है, पर वह अपने को एक चतुर गायक समझता है, लेकिन उसे गाने का अधिकार नहीं है जब तक गाने की सब रीतियों को न जाने। ये तो दृष्टांत दिया उन्होंने। प्रतिभायुक्त वैद्य का दृष्टांत, यो तो दवा बताने वाले वैद्य घर घर है। कोई भी तकलीफ हुए होगे, जो मिलता है वो कुछ ना कुछ तो दवाई बताते ही है। क्यों? डायबिटीज हो या जॉन्डिस हो, जितने लोग मिलेंगे उतने अलग अलग नुस्खे तो बताएंगे। तो कहते दवा बताने वाले वैद्य घर घर पर मिलेंगे। कोई सा भी वैद्य हो, पर जितने बैठे होंगे वे सब बता दे दवा बता देंगे। लेकिन जिसका उस विषय में अविचल प्रवेश नहीं है, उसको अधिकार नहीं है। एक वैद्यराज के साथ नौकर रहता था। वह जहाँ रोगियों को देखने जाए वहाँ वह नौकर भी जाता था। वैद्य ने एक रोगी की नाड़ी देखी और जो कुछ नीचे निगाह की, हाट के नीचे देखा तो भटा के छिलके पड़े थे। भटा ने वो बैंगन उस दिन कहा था ना, बैंगन बंगन, आप नहीं थे क्या? कल के परसों स्टोरी आई थी ना। हाँ, वैद्य बोला तुम्हें अजीर्ण हो गया है। कुछ जी मचलता है? हाँ साहब। कुछ पेट में ऐंठन सी होती है? हाँ साहब। दो चार बातें ऐसी है जनरल कि नाड़ी पकड़कर कोई भी कह दे। तो तुमने भटा खाया है इससे अजीर्ण हो गया है? नौकर वैद्यराज की सारी क्रियाएं देख रहा था। नौकर ने सोचा कि अब हम स्वतंत्र वैद्य बनेंगे, थोड़ा और कुछ अच्छा अभ्यास बना ले। वैद्यराज के साथ एक दिन वह दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक ऊंट माला मिला। ऊंट ने पूरा कदुआ खा लिया था, वह गले में अटक गया था, सो बड़ा बेचैन हो रहा था। वैद्य से ऊंट वाले ने प्रार्थना की कि हमारा ऊंट अच्छा कर दो। वैद्यराज ने क्या किया कि ऊंट को लिटा दिया और दो पत्थर मंगाए। एक पत्थर गर्दन के नीचे रखा और एक पत्थर से ऊपर से धीरे से छोड़ दी। कद्दू फूट गया, ऊंट उसे निगल गया और चंगा हो गया। कद्दू है ना, वो तो भोपड़ा। हाँ वही ना कद्दू। अप्रतिभा नकल की वैद्य की विडंबना, इन्हें प्रतिभावान के उल्टा अप्रतिभा लिया। नौकर सोचता है कि अब हम खूब अभ्यस्त हो गए, हमने वैद्यराज की सब कलाएं जान ली। ऐसा सोचकर वह खुद स्वतंत्र वैद्य बन गया। ये सारे मिलते हैं ऐसे बहुत सारे, कितने वार्ड बॉयज भी वो सर्जन सर्जरी भी करते हैं। हाँ रोज ऑपरेशन थिएटर में रोज काम करते हैं वार्ड बॉयज, देखते हैं तो वो स्वतः अपना वो सर्जरी की भी प्रैक्टिस कर चालू कर देते हैं। हमने बहुत सारे सुने। अरे वर्ग कंपाउंडर तो करते ही करते गाँव में, क्यों कितने करते हैं आरएमपी या कोई भी पोस्ट मिल रहे, और यहाँ के भी बहुत सारे करते। अब इलीगली कुछ भी करे उसमें क्या है, उनको क्या लगता है रोज देख रहे हैं ना वहां पर, हम भी सर्जरी कर सकते हैं। नौकर सोचता है कि यह भी सोचने वाला नौकर मिला ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं। नौकर सोचता है कि अब हम खूब अभ्यस्त हो गए, हमने वैद्यराज की सब कलाएं जान ली। ऐसा सोचकर वो खुद स्वतंत्र वैद्य बन गया। आजकल नहीं, वो तो दवाई दे दे कर खुद अपना भी मेडिसिन करने लगे, सेल्फ मेडिकेशन होता है ना। वो लोग खोलते भी क्या होता है, एक एंटीबायोटिक दे दो, एक बुखार वाली गोली दे दो, एक कोई एंटीस्टम दे दो, चलो काम चल जाएगा। फिर मेडिकल कॉलेज में जाने की सीखने की कोई जरूरत नहीं है ना। एक जगह एक रोगी को देखने गया, नाड़ी पकड़कर कहता है तुम्हें अजीर्ण हो गया है। हाट के नीचे देखा तो घोड़े का पलीचा पड़ा था। सो कहता है कि तुमने घोड़ा खा लिया है, इससे अजीर्ण हो गया है। खैर वहाँ से ठुक पीट कर दूसरी जगह पहुँचा। किसी गांव में एक बुढ़िया बीमार थी। सो घर वालों ने कहा, वैद्य जी हमारी माँ को देख लीजिए, बीमार है। हाँ हाँ देख लेंगे। देख कर कहता है, दो पत्थर मंगाओ। आ गए पत्थर। एक पत्थर बुढ़िया के गर्दन के नीचे रखा और एक पत्थर ऊपर से बुढ़िया के गले में मारा। बुढ़िया तो स्वर्ग सिधार गई। लोग लड़ने लग गए तो ठुके पीटे वैद्यराज बोले कि ऊंट का रोग इसी तरह दूर हुआ था। तो जिस विषय में अधिकार नहीं है, उस विषय में हम अपना प्रवेश करें तो उसमें सफलता नहीं होती है। यो ही हो तो गांव में घर घर सभी वैद्यराज न बन जाए। यानी जिसका उपदेश दे रहे उसका अच्छी तरह से अभ्यास होना चाहिए। अभी अवक्ता की बात को, ये तो कोई भी अभी पुस्तकें भी इतनी निकल पड़ी है, इधर से थोड़ा माल उधर से थोड़ा माल, मगर उसका अभ्यास नहीं हो और ऐसे पुस्तकें लिखी जाए तो उसमें क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है आप सोच सकते हैं। स्पेशली करनाने के बारे में ऐसे बहुत हो रहा है आज कल, क्या करें।
ऊपर से समीक्षणा था आपके लिए,
और फिर हमारे पास है कि इसको जांचो। हम हाथ जोड़कर यहाँ से नमस्कार करते हैं कि कृपया आप पुस्तकें मत लिखा करो। तो फिर पूछते कि तो क्या फिर मैं पहले अभ्यास करूं? ये बच्चा भी जानेगा कि किसी विषय को आपको लिखना है तो अभ्यास पूर्वक ही तो लिखना पड़ेगा। बिना अभ्यास के कुछ भी अपनी मति कल्पना से कुछ लिख दे। अभी आज तो मालूम नहीं किसका क्या अभ्यास है, अभी 20-25 साल के बाद, 50 साल के बाद वो पुस्तक किसी के हाथ में लगेगी तो यही अपना आगम है, ऐसा कहकर उसकी बात चल रही है। यानी ये जिम्मेदारी कोई नहीं समझता। देखो
50 साल के बाद आप यहाँ नहीं रहेंगे,
कोई बात नहीं। हाँ वो अपनी योग्यता से जो कुछ जानेंगे वो बात सही है, परंतु यह जिम्मेदारी है लिखने वालों की। जैसे वक्ता की, वैसे वक्ता तो बोलकर चलो, अभी आजकल वो भी नहीं, क्योंकि सीरी भी उसकी चलती रहती है और वो सीरी के द्वारा भी वही गलत प्ररूपणा होती रहती है, और पुस्तकें निकालेंगे तो वही भी गलत प्ररूपणा चलेगी। ये जिम्मेदारी बहुत अधिक है, क्योंकि भगवान से चली आई बात है, उसमें अपना बिल्कुल अच्छा अभ्यास हो तो ही प्रवेश करना, दूसरों को बताना, दूसरों को अपने जिसके अपना अपना विषय उसमें बोलो, मगर दूसरा जो अपने अभ्यास नहीं है और हम वक्ता है तो हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है, ऐसा नहीं उसका। देखो अविकल ज्ञान में उपदेश का अधिकार, जिसका जिसमें अविकल प्रवेश नहीं है, यानी पूरा प्रवेश नहीं है, यानी वो थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है, अच्छी तरह से उसका ज्ञाता होना चाहिए, वो उसका अधिकारी नहीं होता। यो ही जानो कि जिसका श्रुत में अविकल प्रवेश नहीं है वह शास्त्र का अधिकारी नहीं होता है। ये सब बातें उत्कृष्ट रूप की बताई जा रही है। यहाँ यह अर्थ न लेना कि यदि हमें उत्कृष्ट वक्ता न मिले तो हम साधारण वक्ता से भी न सुने। हाँ एक बात और है, जितने भी गुण वक्ता के बताए गए हैं वे सब गुण कुछ न कुछ हद तक होने ही चाहिए, तब वह शास्त्र का अधिकारी होता है। उपदेष्टा कहने वक्ता का शुद्ध आचरण। शास्त्र का अधिकारी वह पुरुष है जिसकी वृत्ति शुद्ध रहती है, खान पान का पापों से दूर रहने का, जिसका शुद्ध आचरण है वह शास्त्र बाँचने का अधिकारी कहा जाता है। जिसके दुराचार प्रकट हो उस वक्ता के प्रति श्रोता तो मन में यह सोचेंगे कि देखी गई घटना हो रही है, जैसे बिल्ली चूहा मारकर हज करने जाए। हज समझते ना, मोमेंट जाते ना हज में, उनकी तो यात्रा होती है, वो बहुत बड़ा उनको माना जाता है। तो बिल्ली चूहा मारकर, तो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज कर चली, ऐसा वो कहावत है उसकी। खुद तो दुराचार से रहते हैं और शास्त्र गद्दी पर बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें बखानते हैं। हमें एक मिले थे कहीं सज्जन, तो कहते मैं शास्त्र की गद्दी पर बैठा हूँ तब पंडित हूँ, और दुकान में जाता हूँ मेरे अपने तो मैं खाटिक हूँ, कसाई हूँ। यानी वहाँ कैसे भी अनीति अन्याय से पैसे कमाना, श्रोतागण वहाँ दोषों को ही ग्रहण करेंगे, गुण ग्रहण न कर पाएंगे। शास्त्र का अधिकारी वह पुरुष है जिसकी वृत्ति स्वयं शुद्ध हो, मन की प्रवृत्ति निर्दोष हो, सबके सुख की भावना हो, किसी जीव के प्रति ईर्ष्या का परिणाम न हो। देखो, जो स्वयं शास्त्र पढ़ने से भी परिणामों में इतनी मंदता आ जाती है, ये तो स्वयं पढ़कर दूसरों को बतावे तो उसके भी इतने तो वृत्ति में इतनी सज्जनता नहीं हो तो उसका इफेक्ट भी नहीं होगा, उसकी वाणी में भी वो बात नहीं आ सकती। जो मनुष्य सब जीवों के सुख की भावना करेगा वह स्वयं सुखी हो सकता है। दूसरों को दुख उत्पन्न हो ऐसी भावना में यह प्रथम ही दुखी हो गया। यदि यह दुखी न हो तो दूसरे के प्रति दुखी होने की भावना नहीं जगती। दूसरे को सुखी होने की भावना करो तो स्वयं में भी बड़ी प्रसन्नता रहती है। वचन भी निर्दोष होना चाहिए, छल कपट से रहित, दोहरे तिहरे गुप्त अर्थ से रहित, साफ स्पष्ट वचन हो। दोहरे ने जो एक ही शब्द का दो दो यानी डबल अर्थ हो सकता है, उसके मीनिंग में डबल मीनिंग हो सकता है, यानी कोई उसमें से गुप्त अर्थ निकल सकता है, तो ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए। शरीर से भी चेष्टा पाप रहित होनी चाहिए। यो मन वचन काय की प्रवृत्ति जिसकी शुद्ध हो वही पुरुष उपदेश देने का अधिकारी है। उपदेष्टा का पर प्रतिबोधन परिणाम। तीसरी बात कह रहे कि दूसरे जीव के प्रतिबोधन, प्रतिबोधन करना है ना, उसको बताना, उपदेश देना। दूसरे जीव के प्रतिबोधन में जिसका परिणाम लगता हो वही उपदेशदाता योग्य है, यानी जिसको दूसरे के समझाने में जिसका मन लगता हो वही तो अच्छी तरह से समझा सकता है। जिसके चित्त में दूसरे को समझाने का परिणाम नहीं है वह न जाने किस किस प्रयोजन से भाषण करता रहता है, मेरी आजीविका ठीक रहे, लोक में मेरी प्रतिष्ठा हो, या लोग मुझे बड़ा समझे, यह उसका प्रयोजन रहता है। ये प्रयोजन तो ठीक नहीं है। जिस उपदेष्टा के पर के समझाने का परिणाम है वही यथार्थ उपदेश कर सकता है। इस ज्ञानी संत ने अपने आप में हित की बात समझी और यह बड़ा सुगम है, स्वाधीन है, स्वयं के स्वरूप रूप है, इतना स्वाधीन उपाय ये जगत के जीव नहीं कर पा रहे हैं, इससे ये दुखी है। अपनी दृष्टि ये संभाल ले, ऐसी जिसके करुणा जगी है वही पुरुष उपदेष्टा कहला सकता है, यानी जिसने अपना आत्मा का अनुभव कर लिया है, बारंबार अपने स्वरूप में भी एकाग्र होकर अपना अनुभव और अपने में और जमते जाते हैं तो उनके अन्य जीवों की यानी दुख देखकर, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारे जो दुखी है वो अपने अपने कषायों से मोहराग देश से दुखी है और उनका जो उपाय है उसको मिटाने का वो सबके अपने हाथ की बात है, स्वाधीन है, सरल है। तो कहते कि ये लोगों के प्रति उनके करुणा भाव जगता है और वे ही अच्छा उपदेश दे सकते हैं। कोई पुरुष किसी पर दबाव डाले, धर्म करो, नियम करो, तो ये धर्म और नियम जबरदस्ती से नहीं होते। स्वयं की आत्मा में ज्ञान का प्रकाश जगे तो यह प्रेरणा करने की भी जरूरत नहीं है कि तुम नियम करो, यूं चलो, यानी आत्मा का अनुभव हो जाते। आत्मा में ज्ञान का प्रकाश जगे का अर्थ होता है आत्मा का अनुभव हो जावे, तभी उसको ये करो वो करने कहने की भी जरूरत नहीं है। उसी को अंतर से ही लगता है ना कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, तो सहज रूप से उसकी प्रवृत्ति में ये बातें आचरण में आ जाती हैं। उपदेष्टा का यह यत्न होता है कि यह हेय और उपादेय वस्तु स्वरूप को जान जाए। केवल पर के प्रतिबोधन में ही इसके परिणाम जगा है। उपदेष्टा का सन्मार्ग प्रवर्तन में उद्यम, उद्यम यानी उसका प्रयत्न। उपदेष्टा में यह भी विशेषता है कि वह सन्मार्ग की प्रवृत्ति करने में बड़ा उद्यम रखता है। जगत के जीव मनुष्य जन यथार्थ मार्ग को समझ जाए, इस मार्ग का प्रसार हो, लोग जाने तो उनका भला होगा, ऐसा ध्यान रखकर सन्मार्ग के प्रसार में उनका बड़ा उद्योग होता है। यहाँ एक यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि ज्ञानी पुरुष हठपूर्वक धर्म प्रसार नहीं करता, किंतु ज्ञानी पुरुष में ऐसी योग्यता है, उनके तनिक से यत्न से, तनिक से नहीं छोटे से कम यत्न से भी लोगों का महान उपकार हो जाता है। हाँ, देखो देखो क्या कहना चाहते हैं। यानी ज्ञानी क्या सोचते हैं कि जगत के जीव यथार्थ मार्ग, जो सही मार्ग है, सन्मार्ग है, उसको अपनाए और स्वयं सुखी हो जाए। उसके लिए वो उसके प्रयत्न भी होते हैं, उद्योग करता है ना, उद्योग यानी वो व्यापार धंधा वो है उसका, ऐसा नहीं कहना, उसके इसके प्रयत्न रहते हैं उसके लिए ज्ञानी के। अभी आगे कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष हठपूर्वक धर्म प्रसार नहीं करता, हठ से नहीं करता है ना, यह केवल प्रचार प्रसार ही अपना कार्य है वह उसके लिए, ऐसा नहीं है, उसके हट से नहीं, वो सहज उसके होते रहते हैं, कोई नहीं सुनता, नहीं आपको सुनना ही चाहिए, ऐसा भी हट नहीं उसके, है ना, इसलिए हट से नहीं करता है। किंतु उसमें कैसी योग्यता है, तनिक से नहीं थोड़े से भी यत्न से लोगों का महान उपकार हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी है वो, आत्मज्ञानी है, तो उसकी बात में वो ऐसा प्रभाव आता है कि सामने वाले पर उसका असर पड़ता है। अभी असर भी उसी को पड़ेगा जो योग्यता वाला होगा। तो ये सहज निमित्त निमित्त कैसे संबंध होते हैं कि जिसकी योग्यता जग गई है, पक गई है हम कहेंगे, तो उसके ऐसे ज्ञानी का समागम सहज रूप से मिलता है और उनके उपदेश से ये भी उस तरफ यानी उसका अभ्यास करता है, कहो उसका आगे बढ़ता है। दूसरे लोग समझते हैं यह पुरुष पर का उपकार करने में अपनी कमर कसकर उतरा है, ये बात सही नहीं है। यानी लोगों को क्या दिखता है, अरे बस ये दूसरों का उपकार कर रहा है, अपना कब करेगा, अपना कब करेगा, उसके लिए अलग से बैठना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो उसको शास्त्र की बातें बताता है तो उसके लिए वो तो अपना भी वहाँ उसका स्वाध्याय तो है ही है, और ये अंतरंग में जो अपने को क्या समझ कर वो कर रहा है, तो मैं ज्ञाता दृष्टा, उस समय भी उसका ज्ञाता दृष्टापन चलता रहता है, क्योंकि बोलने की शरीर की ये तो क्रिया तो पर की क्रिया है, वो तो वो समझ गया है, उसने अनुभव पूर्वक जाना भी है, यानी उसमें उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है उसका, ये कहना चाहते हैं। देखिए लोग समझते हैं यह पुरुष पर का उपकार करने में अपनी कमर कसकर उतरा है, पर वहाँ बात ऐसी नहीं है। जिस मनुष्य के निज के उपकार की प्रबल भावना नहीं होती, वह पर के उपकार में भी सफल नहीं हो सकता। क्या कहा, यानी जिसको अपने स्वयं के उपकार करने की प्रबल भावना है वही पर के उपकार में सफल हो सकता है। ज्ञानी के तनिक यत्न में लोगों का उपकार होता है, तनिक यानी थोड़े से यत्न में लोगों का उपकार होता है। हठी पुरुष कमर कसकर परोपकार के लिए उतरता है, यानी हठी यानी वो मैं सबका भला करने वाला हूँ ऐसा मानने वाला, वो हठी पुरुष, यानी उसको आत्मज्ञान तो नहीं है, किंतु उससे यथार्थ में उपकार नहीं हो पाता। खैर, उपदेष्टा की यह विशेषता है, वह यथार्थ मार्ग के परिहार में अपना श्रम करता है। उपदेष्टा की उत्कृष्ट प्रकृति, उपदेष्टा पुरुष उच्च पुरुष होता है, बड़े बड़े ज्ञानी जन भी उनको नमस्कार करते हैं, और यह उपदेष्टा अपने से अधिक ज्ञानियों को नमस्कार और उनका विनय करता है। जहाँ यह दूसरे का वंदन स्वीकार करता है वहाँ इसमें ऐसी योग्यता है कि अपने से अधिक ज्ञानी संत पुरुष का यह वंदन करता है। शास्त्र प्रतिपादन का अधिकारी उपदेष्टा किस क्रिया में रहता है उसका यह वर्णन चल रहा। उपदेष्टा की निरभिमानता। उपदेष्टा अभिमान से रहित होता है, उसमें उद्धतपना नहीं होता है। उद्धतपना समझते हैं? इसको उद्धट भी कहते मराठी में, यानी अंग्रेजी में क्या कहेंगे, क्या क्या वायदा ही बात अलग है। ये उद्धट यानी हाँ रूढ़ भी नहीं होता है। उद्धट का अर्थ होता है कि मैं बहुत समझने वाला हूँ, इनमें मैं बहुत ज्ञानी हूँ, आप क्या जानते हो, हाँ वे गर्विष्ठ इगोइस्ट, इगोइस्ट ये इगोइस्ट उद्धत बना नहीं इगोइस्ट। यही देखे ना, वह समस्या है कि कोई हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, यानी उद्धत उद्धत यदि तो उसी को यहाँ उद्धत का, हाँ बिना विनय वाला मगरूर, हाँ देखो ये उपदेष्टा कैसा है कि उपदेष्टा तो ऐसा होना चाहिए, वो समझता है कि कोई हम अपनी बात तो नहीं कह रहे हैं, यह तो महावीर स्वामी की परंपरा से अथवा अनेक तीर्थंकरों की परंपरा से जो चला आया हुआ सन्मार्ग है उसकी बात कर रहे हैं। घमंड किस बात का? ये घमंड से जो बोला जाता है वो उद्धत के
घमंड,
यानी कोई उसके उसकी प्रशंसा भी करेगा तो कहते ये हमारी प्रशंसा नहीं, ये तो जिनवानी की प्रशंसा, ये तो जो ज्ञानियों ने ग्रंथों के रूप में लिखा है ये उनकी प्रशंसा है। और वो ज्ञानी भी कहते हैं हमारे सारे आचार्य परंपरा में सब में लिखा, ये हमारी बात नहीं, ये भगवान ने बताई हुई बात, ये सारे कर्णानियों के ग्रंथ निकाल के देखिए उसमें ये बताइए भगवान ने ये बात बताई, कोई नहीं कहता कि मैंने ये बात ढूंढ निकाली है, मैंने ये कुछ ऐसा नहीं, जिनेन्द्र भगवान ने बताई हुई बात है। यह समस्त तत्व तो प्रभु ने बताया है, हम तो प्रसार करने वाले मानो एक मुंशी की तरह हैं, कोई अभिमान करने योग्य हम में कला नहीं है। किस बात का अभिमान हो ऐसी प्रतीति योग्य उपदेष्टा में रहती है, अतः वह उद्धतपना से रहित होता है। जैसे हमने ऐसे फूलों की कटोरी में से हाथ में फूल उठा उठा कर दे दिए लोगों को, तो क्या हुआ, हाथ भी सुगंधी हो जाएगा। तो क्या हाथों की सुगंधी है क्या फूलों की है? ऐसे ही जो उपदेश देने वाला है वो शास्त्रों के वचन खुद जानकर लोगों को समझा रहा है, वो शास्त्र के वचनों की महत्ता है, किसी वक्ता की अपनी नहीं है। लोकज्ञता। यह उपदेष्टा लोक रीति का भी ज्ञाता होता है, पहले भी बात आई थी ना लोक व्यवहार का जानने वाला होना चाहिए। देश में भिन्न भिन्न प्रकार की लोक रीति होती है, उस लोक रीति से अनभिज्ञ हो और कोई बात में लोक रीति से बिल्कुल खिलाफ आए तो वह शांति का कारण नहीं बनता। योग्य उपदेष्टा लोक रीति का ज्ञाता होता है। ज्ञानी पुरुष में इतनी योग्यता होती है, वह पुरुष का हृदय क्षण भर में एक दृष्टि से पहचान लेता है, उसे इस बात की आवश्यकता नहीं है कि वह दूसरे के हृदय की बात बतलाए, किंतु अभिज्ञता उसे हो जाती है और परख कर लेता है कि अमुक व्यक्ति इस आशय का है, अमुक इस प्रकृति का है। दोष भी सब ज्ञात हो जाते हैं किंतु वह उदासीन रहता है, इस कारण लोकचर्या में नहीं पड़ता। क्या कहते हैं, यानी वो सामने वो अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं, उसके श्रोताजन भी, तो वो देख कर भी पहचान भी लेता है कि इसमें क्या खामी है कहो, या किस आशय से ये पूछ रहा है कहो, या उसका अभिप्राय भी इसके ख्याल में आ जाता है। परंतु उसके दोषों को कहो या इसको उसके प्रति उदासीन रहते हैं ना, उसको पूरे हाँ गौण करके सब लोगों में वो उसको ये नहीं कहता कि इसकी बातें ऐसी है। सभा में तो ऐसा नहीं कहेगा ये आदमी ऐसा करता है वो आदमी, ऐसा नहीं होता उसमें। हाँ ये होता है कि किसी का दोष समझ में भी आ जाए तो उसको समझा रहे शांति से, उसको कह रहे कि ये बात ठीक नहीं है, उसे लोक रीति व लोक नीति के विषयों का परिज्ञान होता है। यही रुकेंगे, समय हो गया 26 पेज पर, वो कल से पर, कल नहीं है अभी 14 तारीख को मिलेंगे। जावानी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।